भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय कितना केम छे छे सो चैप्टर 6 वर्स नंबर 33। आप सबके पास आपकी कॉपी है भगवद गीता की सबके पास। वंडरफुल। अर्जुन उवाच योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितं स्थिराम् योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितं स्थिराम्। को बोलना चाहे कोई शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यह अयम यह पद्धति योगः योग त्वया तुम्हारे द्वारा प्रोक्तः कही गई साम्येन सामान्यतः मधुसूदन हे मधुर असुर के संघर्ता एतस्य इसकी अहम मैं न नहीं पश्यामि देखता हूँ चंचलत्वात् चंचल होने के कारण स्थिति को स्थिराम हाय। इसका अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोदेशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। थैंक यू फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको साइलेंट पे करें। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है। जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से व्यक्ति का नियमन करती है, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और अपने और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हों, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय हरे कृष्ण। तो भगवद गीता में अभी हम लोग ध्यान योग की ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें जो पहले 6 चैप्टर हैं वो कर्मयोग के ऊपर और जो 6 चैप्टर तक आते हैं तो अष्टांग योग तक पहुंचते हैं। बीच के जो 7 चैप्टर हैं वो भक्ति योग के ऊपर चर्चा हो रही है उसमें, और आखिरी के जो 6 चैप्टर हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, किस तरह से भगवदगीता की नॉलेज को अप्लाई किया जाए उसके बारे में चर्चा हो रही है। पर एक्चुअली देखा जाए तो सारे आप प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य देखेंगे उसमें भक्ति योग की चर्चा हो रही है। इसलिए कुछ जो कि तथाकथित जो कि स्कॉलर्स हैं वो अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जो ये कॉमेंट्री है उनमें सब में जो है उन्होंने भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग दिया हुआ है। ये इससे जो है ना ये लगता है कि इनको इनको कोई फेवरेटिज्म है कि वे ठीक है इनको कृष्ण से आसक्ति होगी तो इन्होंने सब जगह कृष्ण 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 नाला हुआ है। ऐसी सब जगह कृष्ण कृष्ण नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद ने क्यों डाला ये, क्योंकि जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि कलयुग में हम लोगों की प्रवृत्ति है कि भटकना, तो इसीलिए इसलिए प्रभुपाद हर एक श्लोक में कंक्लूजन दे देते हैं कि भक्ति योग जो है वो कंक्लूजन है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति योग जो है हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति योग को इंक्लूड करते हैं, उसमें डालते हैं। दूसरा कारण यह है कि कोई भी योग उसमें शक्ति वो भक्ति योग से ही आती है। कोई भी योग, जैसे कि जितने भी बाकी योग हैं वो उनकी माँ एक ही है और वो माँ है भक्ति योग। बच्चों को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? माँ से मिलता है। उसी तरह से जितने भी योग हैं इनको नरिशमेंट, इनको जो ताकत मिलती है वो इसलिए मिलती है, तभी मिल पाती है जब ये अपनी माँ के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी भक्ति योग। तो कई ऐसे योग खुले हुए हैं जो कि शास्त्रों में कहीं नहीं है। ऐसा एक बार मैं अपने ऑफिस में था, मेरे ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, वो सहज योग कराने के लिए आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा सहज योग करा रहे हो तो ये मतलब स्क्रिप्चर्स में कहाँ मिलता है, शास्त्रों में कहाँ मिलता है? मतलब मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा लेकिन शास्त्रों में कहाँ मिलता है? अरे शास्त्रों में क्या लिखा है, ये तो सब पुरानी किताबें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। तो इस प्रकार कई सारे योग हैं जो कि आज चल रहे हैं, और तो ये तो मतलब थोड़ा सीरियस है, अदरवाइज डिस्को योग चल रहे हैं आजकल। हाँ डिस्को योग करते हैं लोग, हाँ मैं डिस्को डांसर उस पर डांस करते हैं, तो यही योग है। तो इस तरह से कई सारे योग चल रहे हैं। तो ये जितने भी योग हैं सारे सारे भोग हैं, क्योंकि जब तक ये योग पद्धतियां जितनी भी है, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, जब तक ये भक्ति के संपर्क में नहीं रहते, इनमें जान नहीं है, बच्चे को ताकत अपनी माँ से मिलती है। इसीलिए जितने भी योग हैं, इसलिए श्री प्रभुपाद हर एक के तात्पर्य में जो है माँ की चर्चा जरूर करते हैं, वो है भक्ति योग। और इसके बाद इसका कंक्लूजन देंगे भगवान खुद भगवद्गीता के इसी अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक जो है उसमें देंगे भगवान। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरी श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान एक कंक्लूजन देंगे अभी आगे जाकर चैप्टर 6 वर्स नंबर 47 में, लेकिन अभी जो है यहाँ पर मन की चर्चा चल रही है, मन की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर एक योग की पद्धति जो बताई गई, तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। हालांकि अर्जुन कर सकते हैं, एक तो वो भक्त हैं इसीलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैं तो चला गया, मैं तो कर लूंगा, होगा क्या मेरे साथ, ये तो सैनिक है ना, यार अर्जुन तो निकल गया, हम लोग भी वैसे निकल लेते हैं जंगल की ओर, लेकिन वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या, क्योंकि अंदर खून तो क्षत्रिय दौड़ रहा है ना, तो इसीलिए जो है उनका मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा भगवान में, ये जानते हैं अर्जुन। तो इसलिए वो कह रहे हैं, वो खुद ही अपना वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, वो कर सकते हैं जबकि, लेकिन वो जानते हैं कि यद्यत आचरती श्रेष्ठ, चैप्टर 3 वर्स 21 में हमने भगवान बता रहे हैं जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं आम व्यक्ति उसी को फॉलो करता है, कॉपी करता है। जैसे इंडिया हमारी टेंडेंसी है कि जो चीज अमेरिका से आती है उसको फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में लीडर माना जाता है अमेरिका को, है ना। जैसे यहाँ भाकरी बनती थी इंडिया में, तो थोड़ी मोटी रोटी होती थी, उसके ऊपर थोड़ा मक्खन होता था और उसके ऊपर थोड़े वेजिटेबल्स करते थे, और उसको जो है तवे पे तल के जो है और घी के साथ उसको दिया जाता था। कौन जाता था इसके बारे में, कोई नहीं। ये जब पिज्जा आ गया तो पिज्जा हट खुल गया, बाकरी हट कभी नहीं खुला, अबे कभी नहीं खुला, क्योंकि वो इंडियन है, उसे क्या करना। यद्यत आचरती श्रेष्ठ, जो अमरीका करेगा, जो इटली करेगा, तो हम उसको फॉलो करेंगे। अब जगह जगह पिज्जा दिखते हैं, है ना, कि उसमें ऑलिव हो है कि नहीं है, उसमें पेपर है कि नहीं है, ये है वो है कि नहीं है। अब फेमस हो गया, क्योंकि वो यदर आचरती श्रेष्ठ, क्योंकि हम श्रेष्ठ अमेरिका को मानते हैं। तो अर्जुन ने देखा कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये लोग जो मेरे पीछे आएंगे ना, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्जुन ने कहा भगवान ये व्यवहारिक नहीं है, उस वक्त व्यवहारिक नहीं है, जबकि उस समय द्वापर युग चल रहा है, अभी उस समय द्वापर युग चल रहा था, अभी कलयुग है। तो द्वापर युग में लोग फिजिकली ज्यादा फिट थे, आज आज हमको आज हमसे सीधा नहीं बैठा जाता। देखो अगर आपके पीछे से ये हटा दिए जाए, ये जो एलो है, आधी क्लास नहीं आएगी प्रभु जी, बड़ा मुश्किल होता है, आयोडेक्स का खर्चा बढ़ गया हमारा मंडे क्लासेस की वजह से, हमसे बैठा नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं हमारे लिए। लोग आती बाती कितनी देर बैठ पाते हैं, थोड़े देर ऐसे बैठते हैं, थोड़े देर वैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, फिर पांव सीधा करते हैं, नहीं बैठ पाते क्लास में। देखो कलयुग का कैसे करेंगे, बताओ, नहीं कर सकते, उसने बोल दिया नहीं कर सकता मैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन ही खतरनाक है, हाँ, जिस प्रकार की योग पद्धति बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे कई लोग जाते भी हैं अपने मन को विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मन जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार श्रील प्रभुपाद ना एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तो एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तो बस गाड़ी जो है बंद करने ही वाले थे, जो दरवाजा होता है बंद करने ही वाले थे, तो भी एक भक्त दौड़ता हुआ कहता, प्रभुपाद प्रभुपाद आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू प्रभुपाद, मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। प्रभुपाद जी ने दरवाजा खोला, कहते बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। प्रभुपाद व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक वर्ड बोला, वर्ड क्या था, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ये वर्ड इतना श्लोकोपाद इतना कंडेंस था, अगर इसके ऊपर विचार किया जाए कि कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए एक ये फैक्टर, सिंगल फैक्टर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग देखिए ना, कई लोग जो आते हैं, जो ऑफिस से आते हैं, तो ऑफिस से इतना एब्जॉर्ब होकर आए होते हैं कि कई बार वो अभी क्लास में बैठे होंगे तो भी सोच रहे होंगे, अरे ये वो फाइल तो भेजी नहीं, अरे ये हो गया, आप बॉस ने ऐसा बोल दिया, कल मैं भी सुना दूंगा। हाँ। ये समझती क्या अपने आपको, एक टाइम से कुछ मंगाती नहीं बाजार से। अभी अभी आलू मंगाए हैं, उसका उसका कहती है झाड़ू भी लेके आओ, एक ही बार मंगा लेना चाहिए, क्लास चल रही होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन 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 किसका फंक्शन है, माइंड का फंक्शन है। और कई बार आप भक्तों को देखोगे वो यहाँ इतने एब्जॉर्ब होते हैं, उनको खोज खबर नहीं होती बाहर की, तो भी अखबार पढ़ते हैं आप, ओह याद नहीं रहता, टीवी देखते हैं आप, टीवी अरे नहीं टीवी तो हम देखते हैं। अच्छा आप लोग प्याज लहसुन ये चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं पीते, नहीं कुछ, तो आप लोग कुछ होता नहीं, क्यों, क्योंकि भक्त यहाँ एब्जॉर्ब है। एब्जॉर्प्शन जो है ये फंक्शन है माइंड का, इसलिए यहाँ माइंड की चर्चा चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना एब्जॉर्प्शन, ये जो हम क्रिया करते हैं एब्जॉर्प्शन की, ये मन की है। तो हम किस जगह से कितना अनएब्जॉर्ब हो पाए हैं और किस जगह पर कितना एब्जॉर्ब हो पाए हैं, वो डिफाइन करता है हमारा अस्तित्व को। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन जो है ये मन का है वास्तव में, और एब्जॉर्प्शन किस वजह से होती है कुछ चीजों की या कुछ पर्टिकुलर कार्यों में, क्योंकि संस्कार मन के ऊपर बनते हैं। कहते हैं इस व्यक्ति के संस्कार बड़े अच्छे हैं, इस व्यक्ति के संस्कार बड़े बुरे हैं, संस्कार बनते कहाँ हैं, संस्कार बनते मन में हैं। आप देखा जब गुंदा हुआ आटा होता है ना, हाँ गुंदा हुआ आटा जो होता है जिसमें आप जो पानी डल गया उसको गुंदा हुआ होता है, उसके ऊपर आप ना इसके चाकू से लकीरें खींचो तो कहते हैं ग्रूव्स बन जाते हैं, लाइनें नहीं बनती ग्रूव्स बनते, मतलब कि गहरी लकीरें बनती हैं। या फिर अगर मक्खन लो, मक्खन के ऊपर अगर चम्मच फेरो तो क्या होता है, एक लाइन मतलब थोड़ी गहरी लाइन बनती है, और गरम गरम मक्खन फेरो तो क्या होता है, एकदम छुरी अंदर ही चली जाती है, एकदम अंदर चली जाती है। उसी तरह से मन जो है बिल्कुल वैसे ही होता है। कोई एक ऐसा कार्य जो आप बार बार करते हैं, कोई एक ऐसा कार्य है जिसने कि आपको बहुत ज्यादा दुख दिया, या फिर एक ऐसा कार्य जिसने बहुत ज्यादा सुख दिया भले कुछ पल के लिए, तो क्या होता है उसके ग्रूव्स बड़े गहरे बन जाते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। तो इसलिए जब भी व्यक्ति के जो मन में वो जब संस्कार बन जाते हैं, इसलिए उसकी प्रवृत्ति वैसी बन जाती है, उसकी प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति कारण क्या होता है, वो जब भी सोचेगा ना वो वैसा ही सोचेगा, मतलब उस ऐसे क्या होता है ना, नाली बन गई हो अब पानी डालो क्या होता है, उसी में से बहता पानी, अगल बगल में नहीं जाता है ना। पानी की अगर आप जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में थोड़ी सी नाली बना दो, आस पास पानी डालो वो ना उसमें बह के निकलेगी। तो उस तरह से विचारों का जो पानी है ना, ये उन संस्कारों में से होके बहता है, क्योंकि संस्कार इतने गहरे हैं। तो मन जो है, मन के ऊपर ही संस्कार बनते हैं ये, और यही संस्कार जब बहुत तीव्र होते हैं तो उसको वासना कहते हैं। वासना से स्त्री पुरुष की बीच में नहीं होती, हाँ वासना का मतलब है एक खास भोगने की इच्छा, जिससे कि व्यक्ति एकदम मतलब पगलैट हो जाता है, मतलब क्योंकि कहते हैं जैसे ही भाई जो सही ऐसा कोई व्यंजन सामने आता है तो व्यक्ति सोचता है अरे गाजर का हलवा आता है ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, डायबिटीज ले जाओ, क्योंकि जैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट आता है ना तो वो संस्कार एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरे हैं। जैसे कईयों को जो चरित्र होता है इतना स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि घर से शिक्षा नहीं मिली, और स्कूलों में तो खैर ऐसी कोई शिक्षा दी नहीं जाती, तो अक्सर बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो अब पेरेंट्स की कोई सुपरविजन तो है नहीं, तो फिर ऐसे बच्चे जो है फिर गलत जगहों पर भी जाते हैं, और ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ एस्टीम्ड इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा करते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि ना वो संस्कार उनके ऐसे बने, उनके संस्कार ऐसे बने, और संस्कार कहाँ बनते हैं, मन के ऊपर बनते हैं। तो हम लोगों के पास जो कि हमने इतने ऊपरांग संस्कार बनाए हुए हैं मन के ऊपर, इस प्रकार का जो योगाभ्यास है जिसके बारे में चर्चा चल रही है, वो करना असंभव है हमारे लिए, मुश्किल भी नहीं है, असंभव है, क्योंकि इसको करने के लिए जो है मन की शुद्धि होनी चाहिए, और मन शुद्ध सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से हो सकता है। हम सबके अंदर जो है पाप करने की जो प्रवृत्ति है जितनी गहराई में है, उससे जो है कोई दूसरी योगपति भी काम करने वाली है ही नहीं, ना ज्ञान योग काम करने वाला है यहाँ पर, हाँ ना यहाँ ध्यान योग काम करने वाला है, वो हम कर भी नहीं सकते वैसे तो, क्योंकि ज्ञान योग के लिए ना बड़ी ऊंची इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत शार्प इंटेलिजेंस चाहिए, कम से कम 25 साल जिसने अटूट ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो उसकी बुद्धि इतनी सशक्त हो पाती है कि वो जो है ध्यान योग का पालन करेगा, सॉरी ज्ञान योग का पालन करेगा। कौन ब्रह्मचारी रहता है कलयुग में, सबको गलत आते लगती हैं युवावस्था में, कौन ब्रह्मचारी रह पाता है, और स्त्रियां भी वो भी दूषित कर देता है कलयुग को। कलयुग ने इनफैक्ट कलयुग ने समाज को तोड़ा कैसे, हम लोगों के तोड़ा ही इस तरह से, उसने दो क्लासेस को खराब कर दिया, एक ब्राह्मण दूसरी स्त्री। अगर इनको पोल्यूट कर दिया जाए किसी भी सोसाइटी में, वो सोसाइटी गई, सिर्फ ये दो क्लासेस खराब करनी है, एक ब्राह्मण दूसरा स्त्री। ब्राह्मण क्या है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, यानी कि हेड ऑफ द सोसाइटी। अगर सारी अगर दिमाग ही खराब कर दो किसी का तो वो तो गया फिर, तो इसलिए ब्राह्मण ही करप्ट कर दिए। ऐसे फेमस स्टोरी बताई जाती है अक्सर कि एक ब्राह्मण था, उसको उसको बोला कि भाई देखिए आप शादी कर दिए, कहते देखिए शादी के हम 5,001 रुपये लेते हैं। कह तो शादी वालों ने कहा देखिए 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, आप ये 2,000 रुपये रखो और करो, और बहुत टाइम लेट हो रहा है, मुहूर्त निकले जा रहा है। तो उसने कर दिया, उसने उसने बाद में अपने साथी को बोला कि हम 5,000 से कम मैं एक पैसा नहीं लेता, मैं जब शादी की बात आती है तो 2,000 रुपये में हमसे ये यज्ञ कराएंगे, हमने तो जी संस्कार के मंत्र पढ़ दिए, समझते हैं क्या अपने आपको, 2,000 में तो हम संस्कार के मंत्र पढ़ते हैं, शादी के मंत्र नहीं पढ़ते हम। ओ अब क्या होने वाला उनकी मैरिज का पता नहीं, वो हॉरोस्कोप मैच कराया होगा, उन्होंने कहा फिर भी तलाक हो गया, अब क्या करें, अब ऐसे ब्राह्मण है कलयुग में, तो कलयुग में क्या ब्राह्मण गए, ब्राह्मण गए, ब्राह्मण क्यों गए, इनकी शुरुआत हुई थी कलयुग की शुरुआत में, इसी कलयुग की शुरुआत में हुई थी, जब महाराज परीक्षित जब बहुत प्यासे थे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, महाराज परीक्षित बहुत प्यासे थे तो जंगल में ढूंढ रहे थे, तो जंगल में थे तो चलो थोड़ा सा पहले से बताता हूँ कि जब वो कलयुग से मिले तो कलयुग ने उस समय गाय को और बैल को मार रहा था, और बैल के ना वो 4 पांव तोड़ चुका था, जो बैल जो कि धर्म का जो है धर्म रूपी बैल था उसको मार रहा था वो। तो तब महाराज परीक्षित ने कहा तुम यहां पर कैसे आ गए, ये मेरा राज्य है और तुम यहां पर क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं, काल चक्र के अनुसार मेरा समय आने का, इसलिए मैं आ गया। महाराज परीक्षित ने कहा तुम तो देखो भले ही काल चक्र जो भी हो, भले ही काल चक्र की अनुमति हो कि तुम्हें अभी आना है कलयुग को, लेकिन लेकिन मेरे होते हुए तुम प्रवेश नहीं करोगे। ये दिन था 18 फरवरी 3102 BC, 18 फरवरी 3102 BC, ये हैप्पी बर्थडे है कलयुग का। कलयुग 18 फरवरी जब आएगा तो आप कलयुग को बोलना हैप्पी बर्थडे, तुमने बहुत पोल्यूट किया हमें। तो कलयुग जो है तो ये वो दिन था, तो उस दिन महाराज परीक्षित ने कहा देखो तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि कलयुग ने कहा लेकिन आपकी शरण में आया हूं, मुझे मार नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें शरण दूंगा, तो तुम ऐसा करो जहां पर मांस खाया जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर स्त्री व्यभिचार होता हो और जहां पर नशा पान किया जाता हो, जहां ये 4 कार्य हो रहे हो वहां तुम रह सकते हो। कलयुग ने कहा आपके राज में 4 कार्य होते ही नहीं कहीं पर, तो मैं कहां रहूंगा। तुम्हारा परिषद ने कहा चलो ठीक है तुम्हें फिर एक और जगह देता हूं, जहां सोना है गोल्ड वहां तुम रह सकते हो, क्योंकि जहां सोना होता है तो सोने के प्रति प्रेरणा भी होती है, तो प्रेरणा होगी तो इसीलिए वहां पर ये 4 कार्य होते हैं अक्सर, तो जहां सोना पदार्थ रूप में है वहां तुम रह सकते हो। उस पर परिषद महाराज जी बोले कि उनका मुकुट सोने का बना हुआ था, तो उसको अनुमति मिल गई, तो वो घुस गया। अब घुस गया तो अब महाराज परिषद को नहीं पता, महाराज परिषद गए तो उनको प्यास लग रही थी, प्यास लग रही थी तो जंगल में वो श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मैंने कहा ए साधु मुझे थोड़ा पानी पिलाओ प्यास लगी है। अब वो समाधि में लीन है, अरे उठो अरे उठो, श्रमिक ऋषि उठे नहीं। मैंने कहा राजा आया है इस राज का, अब ये सब ऐसे ये कलयुग की वजह से हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ना अभी दंड देता हूँ, और फिर वो जो है मानने लगे थे, लेकिन उनका चरित्र ऐसा था कि साधुओं के ऊपर ऐसा नहीं कार्य करते, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मानने जा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। तो साथ में ना एक सांप पड़ा हुआ था, तो सांप मरा हुआ सांप था, वो मरा हुआ सांप लिया उन्होंने उनके उसी गले में डाल दिया, कम से कम इतना तो भुगतो तुम। और ये क्या कहे परीक्षित महाराज चले गए। तो तभी कुछ उनका बेटा था श्रृंगी, तो श्रृंगी के कुछ दोस्त थे, उन्होंने जाके उसे बताया कि तेरे पिता के गले में ना किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। अब श्रृंगी क्योंकि उस वक्त के ब्राह्मण जो कि जेन्युइन ब्राह्मण थे, उनका बेटा था, उसके पास शक्तियां थी, तो उसने कहा मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला, किसकी ऐसी हिम्मत, मैं श्राप देता हूं उसे कि 7 दिन के अंदर जो है उसको तक्षक नाम का एक सांप आएगा और अपनी ज्वाला से भस्म कर देगा। तो क्योंकि अब वो रो रहा था, मेरे पिताजी का ऐसा अपमान, मेरे पिताजी का ऐसा, रो रहा था, तो शमिक ऋषि की जो है समाधि टूटी। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। तो शमिक ऋषि ने कहा तुमने श्राप दे डाला उसे, ये तुमने क्या किया, कौन था वो व्यक्ति? कह रहे वो मुझे नहीं पता, जिसने भी डाला भुगते मरे। तो तभी जो है ध्यान लगाया शमिक ऋषि ने, तो ध्यान में उन्होंने देखा कि अरे तो परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। कहा ये छोटी सी भूल के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, अब उनके जाने के बाद यहां पर तो सिर्फ अधर्म फैलेगा। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट था ब्राह्मणों के करप्ट होने का। जब एक शुद्ध भक्त को एक छोटी सी गलती के लिए शमिक ऋषि के बेटा श्रृंगी ने जब श्राप दिया, उसके बाद ब्राह्मणों का करप्ट होना शुरू हो गया। तो ब्राह्मण और स्त्री जब करप्ट करते तो सोसाइटी चली जाती है। इसलिए आप देखें आज कोई वर्णाश्रम नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी में इस प्रकार का योग करना असंभव, असंभव है। तो इसके बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हटीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। कितना कठिन है बता रहे हैं यहां पर, मतलब वायु को भी कंट्रोल में कर सकते हैं अर्जुन लेकिन मन को नहीं कर सकते। जस्टी अगर हमारे इस रूम में ऐसे हवा घूम रही है, मैं इसको यूं घुमाना शुरू कर दूं, इज इट पॉसिबल फॉर मी? नहीं। अर्जुन कह रहे मैं वो भी कर दूंगा लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता मैं। तो ये जो है मन की स्थिति है। मन को इसलिए श्रील प्रभुपाद बताया करते थे इट इज लाइक अ चाइल्ड, ऐसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, जैसे कुछ बच्चे यहां पर हैं, बिल्कुल किसी की नहीं सुनते। माता पिता कह रहे हैं बेटा शांत हो जा, बेटा बैठ जा, हैं वो अपनी दुनिया में एकदम हठीले होते हैं, वो बच्चे किसी की नहीं सुनते। वो ऐसे ऐसे बच्चे क्या क्या गुण होते हैं, हठीला होता है और जैसे क्या बताया गया यहाँ पर, और चंचल होता है, और बच्चे के गुण बताओ आप। अब यह मन का बारे में सोचो, एक ऐसा बच्चा जो कि जिद्दी है, जो कि बिल्कुल नहीं सुनता, क्या क्या गुण होंगे उसके और बताइए। यस, किसी ने क्या, किसी के बच्चे हुए नहीं क्या आज तक, किसी ने आज तक बच्चे फेस नहीं किए? हाँ मनमौजी, यस मनमौजी होते हैं, और हाँ गुस्सैल, एरोगेंट, हाँ और हाँ जिद्दी होते हैं, हठीले होते हैं, यस हाँ ढीठ, अस्थिर, वॉयलेंट, और हाँ मनमानी करते हैं, मनमौजी होते हैं, मनमानी करते हैं, और हाँ हाँ वो इम्पेशेंट होते हैं, हमको पेशेंट बना देते हैं, चिल्ला जला के माता पिता पागल हो जाते हैं, इसे क्रश में डाल देते हैं अक्सर माता पिता, टेंशन दूर कुछ घंटे के लिए, और अनप्रिडिक्टेबल, सोच नहीं सकते अब ये बच्चा आगे क्या करने वाला है ना। तो बच्चे होते हैं और खासकर बच्चे आपने देखा बड़ी बनावटी अभी रोना रोते हैं वो, हे 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 हे, ऐसे रोते हैं ना, आंखों में एक आंसू नहीं होता है ना, अव्वल दर्जे के ड्राइवर। अब ये सारे के सारे गुण हमारे पागल मन को लगते हैं, हटीला है, जिद्दी है, गुसैल है, बिल्कुल कहना नहीं मानता है, चंचल है, मनमौजी है। अब ऐसे बच्चे को आप कंट्रोल कैसे करोगे? अगर ऐसा बच्चा आपको दे दिया जाए, चलो ये संभालो इसे, क्या करोगे? एक तो ये मत कहना भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान ये काम हमें बता दिया है, क्या करोगे? टीवी खोल के बिठा दो। पर ऐसी क्या, ये टीवी के आगे भी बैठ पाते हैं ऐसे बच्चे? या तो रिमोट तोड़ देंगे या टीवी, या फिर अपना हाथ, हाँ और हाँ एक तो पीट दो है ना, कि भाई ब्लेड से खेलना है हमें, लाओ ब्लेड, लाओ ब्लेड से खेलूंगा, ऐसे ऐसे खेलूंगा ऐसे, मैं भाई ऐसे ऐसे खेलना है, तो क्या करोगे भाई? झापड़ लगाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? या कम से कम छड़ी दिखानी तो पड़ेगा, मारना नहीं हो तो छड़ी तो दिखानी पड़ेगी, है ना? और क्या तरीका है ऐसे बच्चे से डील करने का? समझाना पड़ता है एक तो, या समझाना चाहिए उसे, कभी कभी काउंसलिंग भी करनी होती है उसकी, और हाँ? बंद कर देते हैं उसे रूम में, थोड़ी देर अकेला छोड़े उसे हैं। हाँ थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करें उसका। यस अच्छा जैसे वो करना चाहता है भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, भाई बताओ क्या करना है, कभी झुकना पड़ता है। हाँ तो ये सारे तरीके हमें पागल मन के ऊपर भी लगाने पड़ते हैं, उसे जिम्मेदारी देनी पड़ती है कभी कभी, है ना। कभी जो सिद्धि होता है तो उसको काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, तो क्या कर रहा है भाई, क्यों भाग रहा है उस वस्तु के पीछे, उस व्यक्ति के पीछे, पागल है क्या। बोले हाँ दिल तो पागल है, मैं हूँ। तो बच्चा पागल भी होता है तो उसे समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, और क्या था, पीटना ही पड़ता है कभी कभी उसे, मन को मारना भी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु थे वो कहा करते थे कि हमें अपने मन को सुबह 100 बार झाड़ू से और शाम को 100 बार जूतों से मारना चाहिए, ठीक है। तो 100 बार झाड़ू मतलब 100 बार हरि नाम के झाड़ू से मारना है और शाम को 100 बार विनम्रता के जूते से मारना है उसे। एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभु जी ये जूते से मारना तो कौन सा जूता बढ़िया रहता है, लिबर्टी या बाटा। तो विनम्रता के जूते से मारना है ऐसे, ये ना बाटा से उतरने वाला है ना लिबर्टी से। तो इसीलिए इसको जो है सुबह सुबह मारना, इससे सुबह मारना चाहिए 100 बार, कौन से झाड़ू से, हरे कृष्ण महामंत्र के झाड़ू से, और शाम को कौन से जूते से मारना चाहिए 100 बार से, विनम्रता की ह्यूमिलिटी के झाड़ू से मारना चाहिए इसे। तो इसे मारना चाहिए, इसे जिम्मेदारी देनी चाहिए। और कैसे करते हैं हम बच्चे को कंट्रोल, कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते किसी ने बोला है ना, तो यानी कि उस मन को इंद्रिय विषयों से थोड़ा अलग करने का प्रयास करें, क्योंकि मन जो है इंद्रिय विषयों में इतना ज्यादा घुमा पड़ा है, इतना ज्यादा रमा पड़ा है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसको कम से कम फिजिकली अलग करना, इसका बहुत अच्छा तरीका है कि हम किसी होली प्लेस में जाएं, जैसे कि मंदिर है, ये थोड़ा अभी शॉपिंग से निकलो, थोड़ा अभी टीवी से निकलो, सिनेमा से निकलो, पीवीआर से निकलो, फैमिली पॉलिटिक्स से निकलो, हजार तरह की गपबाजी से निकलो, थोड़े दिन वैकुंठ में जाते हैं, थोड़ा राधा पांच साथी धाम में जाते हैं, है ना, थोड़ा उसको यहां से निकालना, तो ये चीज है। तो इस तरह से पागल मन जो है जो कि बहुत ज्यादा चंचल है, उसको करना, उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। और मन आपको हमेशा वो चीज आपसे मांगेगा जो कि आपके पास नहीं है। 99 क्लब स्टोरी बड़ी फेमस स्टोरी है, जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए सुना रहा हूं मैं जल्दी से, कि एक बार एक राजा था, अपने मंत्री के साथ गया राजा राज्य में देखने के लिए कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उसने देखा, एक ब्राह्मण को देखा उसने राजा ने, तो उसने मंत्री से पूछा, मंत्री तुम इस ब्राह्मण को देख रहे हो, कहता है हाँ जी महाराज, कहते इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन ये संतुष्ट है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं असंतुष्ट हूं, ऐसा क्यों। मंत्री ने कहा महाराज ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है अभी। महाराज ने कहा 99 क्लब का मेंबर ये क्या होता है। तो मैंने कहा महाराज आप बस देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसकी झोपड़ी के बाहर एक बक्सा रखा हुआ था, उसे बक्सा खोल के देखा, उसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने काउंट करने से शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 तो 100 होने चाहिए थे। दोबारा काउंट करता हूँ, दोबारा काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 99। अरे अरे भागवान, अरे सुनती हो जरा बाहर तो आओ, कहते वो अंदर लेके गया, कहते भगवान जरा काउंट करो इसे। उसने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, कहते 99 है, एक सिक्का लगता है कोई डालना भूल गया इसमें, कहते एक सिक्का अगर आ जाए ना इसके अंदर तो ये अपना पूरा 100 हो जाएंगे अपने। तो कहते कोई बात नहीं, वो एक सिक्का मैं लेके आऊंगा। वो गया जमींदार के पास, कहता है मुझे ना कुछ काम चाहिए। ठीक है भाई, ये बोरियां हैं वहां से उठानी है और वहां पर डालना है, ठीक है जी करूंगा। दिन रात काम करने लगा, एक हफ्ता उसने जी तोड़ मेहनत की, उसने जी तोड़ मेहनत की और फिर गया वापस और इसने एक सिक्का डाला। अब उसने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, एक तो डाला है अभी, ये 98 कैसे हो गया, एक कम हो गया। कहते हैं अरे भगवान सुनती हो, आओ जरा देखो, ये 99 के बाद एक और डाला मैंने ना, तो लॉज ऑफ मैथमेटिक्स के हिसाब से ये 100 होना चाहिए लेकिन ये 98 हो गया, ऐसा क्यों। मैंने कहा अब क्या बताऊं जी, वो साड़ी वाला आया था ना, थोड़ा मैंने सोचा बनारसी का साड़ी ले लूं, बबलू को आइसक्रीम खानी थी तो उसको आइसक्रीम खिला दी, तो उसमें एक दो सिक्के निकल गए। ओहो अब 2 सिक्के कम है, अब जाके अब गया जमींदार के पास, कहता है मैं डबल शिफ्ट करूंगा काम, डबल शिफ्ट काम करना शुरू कर दिया। अब मंत्री ने राजा को दिखाया, कहते हैं महाराज अब ये 99 क्लब का मेंबर है, अब इसका सुख गया। क्योंकि मन क्या है, मन कहेगा देख तेरे पास होता है ही नहीं, अरे तेरे पास मारुति ऑल्टो ही है, गो फॉर सम ऑल्टरनेटिव। हाँ अब तो कुछ और, तू कुछ और भी तो ले भाई, सारी दुनिया कहाँ आगे बढ़े जा रही है ना, i10 लो अब i10, अरे यार i10 तो हो गई चलो, लेकिन अब i20 का बड़ा जमाना है, अब तो i20 लेनी, अरे अरे फिर i20 ले ली, फिर उसके बाद और गाड़ी, अब तो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आ गए, अभी तो ऑडी हाँ BMW वो आ गए एडवांस। तो इस तरह जो चीज आपके पास नहीं होगी, मन कहेगा अरे वो तो तेरे पास है ही नहीं, दुनिया के पास है, तेरे पास है ही नहीं, तो गधे की तरह काम करता है दिन रात, वो उसके पास है मेरे पास नहीं है, मैं पालूं उसको। इस तरह से मन का जो चंचल स्वभाव है वो नचाता रहता है, नचाता रहता है, नचाता रहता है। ऐसी स्थिति में भला कौन योग पद्धति का पालन करेगा इस प्रकार की, कि कहीं पर जाए अकेले में, हाँ बैठ जाए ध्यान लगाए। हाँ जैसे यहां बताया जाए कि इसकी बहुत ही शुद्ध स्थान होना चाहिए, वो शुद्ध स्थान कहाँ है आज हमारे पास, कोई है होली प्लेस ऐसी, कोई होली धाम कोई ऐसा है, जो होली प्लेस है वो यहाँ तो वहां पर अब जो है शॉप खुल गई है, हाँ कि आप वहां खाओ पियो ऐश करो बस, और जो अकेले स्थान है वो होली है नहीं, जैसे रेगिस्तान है वहां कोई नहीं होता, वहां चले जाओगे लेकिन होली नहीं है ना, तो इसीलिए अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन मान भी लिया जाए कि ऐसा स्थान है, मान भी लिया ऐसा स्थान है, तो क्या हम लोग इस लायक हैं, हमें क्या योग्यता है, कोई भी योग्यता नहीं है। इसीलिए जो कलयुग में जो बैच आता है ना, ये यानी हम लोगों का बैच, ये सबसे डफर बैच है। हमको सतयुग में मौका मिला था, नहीं किया, त्रेता में मौका मिला, नहीं किया, द्वापर में मौका मिला, नहीं किया। उस समय मौके थे और समय भी तरीके थे और वो चले जाते थे, उस समय कोई करप्शन नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन ऑफकोर्स धर्म धीरे धीरे नीचे आता जाता है। जैसे कि मैं जैसे सिक्के जैसे बताया था किस तरह से धर्म कम होता है, हाँ कि सतयुग में जब कमाते थे ना लोग तो क्या करते थे कि उछालते थे पैसे और झोली में जो गिर जाता था ना, कहते थे ये भगवान मेरा जो ये सारा गिरा ना वो आपका, आपकी सेवा में। उसने देखा झोली तो बहुत छोटी होती है, तो उन्होंने क्या किया, एक ना सर्कल बनाना शुरू किया, देखा भगवान इस सर्कल के अंदर गिरा वो मेरा, जो सर्कल के बाहर गिरा वो आपका। उसके बाद कहा भाई सर्कल से काम नहीं चलेगा, हमको भाई सीधा सोचना चाहिए, सिंपल लाइन बनाते हैं, जो इस तरफ गिरा मेरा जो उस तरफ गिरा वो भगवान का, इस तरफ खड़े होते थे वो। और कलयुग आया, कलयुग में तो उछाला, भगवान कैच कर लो जो नीचे गिरा अपना, कैच कर लिया ना, ठीक है अपना रख लिया उन्होंने, जो नीचे गिरा वो मेरा। तो धर्म का इस प्रकार से पतन होता है कलयुग में, तो इस तरह से जो धर्म जो है वास्तव में कमजोर पड़ता जाता है, और अधर्म जो है बढ़ना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमको पिछले युगों में मौका मिला जब, तो हमने नहीं किया, तो अभी यह सबसे डफर बैच आया, ये अभी सबसे सबसे डफर बैच है बताए। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस सबसे डफर बैच को सबसे बढ़िया मौका मिलता है, वो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा का। चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी कंपनी में रिक्रूटमेंट होती है सबसे डफर लोगों की। ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अलग अलग कंपनी आती है ना कॉलेज में, कहती है भाई सबसे होनहार बच्चा कौन सा है ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ये जो कंपनी है इसमें सबसे डफर लोग इसके अंदर रिक्रूट किए जाते हैं। इसलिए कलयुग में आते हैं वो अपनी कंपनी लेके, अपने पार्षदों को लेकर, हाँ भाई डफर लोगों, निकम्मों, आलस से भरे हुए लोगों, मंद बुद्धि लोगों, बंद बुद्धि लोगों, लेटे हुए लोगों, झगड़ालू लोगों, अपने आप को सजने संवारने में ही बिजी लोगों, अपने बालों को डाई करने में बिजी लोगों, एंटी रिंकल क्रीम लगाने वाले लोगों, सारे भोगों में लगने वाले लोगों, आओ तुमको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आ जाओ मेरे पास। तो ये चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए, अदरवाइज हमारा मन जो है वो पूरी तरह से रमा हुआ है इंद्र तृप्ति में, प्रभुपाद जी थे, एक बार अपने शिष्य के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ना एक आइसक्रीम है ना, ब्लू बेल, ब्लू बेल की घंटी बज रही थी। आइसक्रीम, आइसक्रीम बता रहे हैं, आइसक्रीम का हिंदी नाम क्या है? नहीं, शक्र दुग्ध हिम घनगोल गट्टू, ये हिंदी नाम है उसका। तो शक्र दुग्ध हिम घनगोल गट्टू बेचने वाली कंपनी क्रीम बेल, उसका टन 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 बज रहा था। प्रभुपाद ने कहा तुम सुन रहे हो इसे? अरे हाँ प्रभुपाद। तो तुम्हारा मन क्या कर रहा है? प्रभुपाद आइसक्रीम खाने कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा दिस इज द साउंड ऑफ माया। तो इस प्रकार से हमारे मन को आकर्षित करने के लिए इंद्रिय जो विषय वस्तु चारों ओर है, और हम घनगोल गट्टू यहां बने हुए हैं, इस दुनिया में घूम रहे हैं 84 लाख योनियों में। तो इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि सबसे डफर बैच कितनी बुरी हालत हो रखी है जब, तो यहां पर आए कि सबसे डफर बैच वालों आओ, तुमको मैं बहुत ही विशेष वस्तु देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो कंपनी है ये सबसे डफर बैच को रिक्रूट करने के लिए आई है, और हम हैं वो डफर बैच के बाशिंदे, स्टूडेंट्स। भगवान हम सबसे डफर लोग, सतयुग में कुछ नहीं किया, द्वापर में भी नहीं किया, त्रेता में कुछ नहीं किया, हम डफर लोग आए कलयुग में। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा देने के लिए आते हैं हमें, तो ये उनकी कृपा है। और फिर अपने पार्षदों को भेजते हैं, जैसे कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भेजा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं, और इसके बाद भी अगर इस कंपनी में रिक्रूटमेंट ना लें, फिर तो मतलब धुर नलायक लोग हैं। अगर डफर है व्यक्ति, उसने कुछ नहीं किया, कम से कम उसे कंपनी में रिक्रूटमेंट तो ले लेनी चाहिए कि भाई तुम्हारी डिग्री है? नहीं, कोई डिग्री नहीं है। तो क्वालिफिकेशन पहली फेल। हाँ, दिमाग है? नहीं, वो तो वहां तो यहां तो गोबर है। ठीक है, तुमको रिक्रूट किया आता, तुम आओगे साइन कर दो यहां पर बस। नहीं, साइन नहीं करूंगा। तो इसीलिए अब कम से कम चैतन्य महाप्रभु जब इतना इजी प्रपोजल लेकर आए हैं, अब ये तो हमें अपनाना चाहिए ना। अब ये भी नहीं अपनाया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मन को अगर हमें नियंत्रित करना है, इसके लिए सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है हरिनाम, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। अदरवाइज जो चीज आसान होती है ना, उसको इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। तो लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसके बिना हम लोग जो है मन को नियंत्रित कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, असंभव है। या समय काफी हो गया तो इसमें मैं यहीं पर रोकूंगा। किसी को कोई प्रश्न है? यस, हाँ यस माता जी, यस। हाँ माता जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि भाई सुबह हमें 100 जूते मानने चाहिए हरि नाम के, शाम को मानने चाहिए, सुबह झाड़ू मानना चाहिए उसे 100 बार, और शाम को जूते मानने चाहिए विनम्रता के। विनम्रता क्या होती है? विनम्रता क्या होती है? विनम्रता का मतलब अपने आप को पूरी तरह से अयोग्य समझना, पूरी तरह से निर्भर समझना भगवान की कृपा के ऊपर, उसे विनम्रता कहते हैं। अपनी पतित अवस्था को जानना, उसे कहते हैं विनम्रता। ये घमंड का उल्टा है। घमंड व्यक्ति का समझता है मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो जो विनम्र व्यक्ति होता है वो अपने आप को पति समझता है, वो वाकई में समझता है, वो सिर्फ बाहर से नहीं बोलता। वहां से बोलते अरे जी बड़े पतित हैं, जी बड़े पतित हैं, लेकिन अंदर होता है बेटा तू पता नहीं, बाद में बताऊंगा तेरे को मैं क्या चीज हूं। तो अंदर से फीलिंग जब वो करता है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तो ये ही, तो ये जो भाव है ये विनम्र व्यक्ति का भाव होता है। तो इसलिए जो विनम्रता का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से निर्भर समझना भगवान की कृपा के ऊपर, भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर समझना, बस उनके बिना तो मेरा कुछ नहीं चल सकता। तो जब ऐसी निर्भरता का भाव होता है पूरी तरह से, तो प्रयास भी करता है तो निर्भरता का भाव होता है, प्रार्थना का भाव होता है, कृतज्ञता का भाव होता है, तो उसे विनम्रता कहते हैं। हाँ यहाँ बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई विनम्रता जो है आप सब जगह सबके साथ अप्लाई होती है या सिर्फ भक्तों के साथ ही अप्लाई करते हैं विनम्रता को?